लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि दुख, कष्टों और कठिनाइयों में पड़े सभी पीड़ितों को सहायता और एकात्मता प्राप्त हो। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, मानव के रूप में हम अपने जीवन में बहुधा एक दूसरे के साथ ना समझी, लड़ाई झगड़े और तकरार के शिकार हो जाते हैं। यह होना हमारे लिए स्वाभाविक है, लेकिन अपने जीवन की ऐसी परिस्थिति में जहां हम अपने को तनाव में पाते, अपने स्वयं के साथ और एक दूसरे के संग कैसे पेश आते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। यह हमें अपने चहुमुखी विकास की बात बयां करती है। पास्का के पांचवें रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों का आशय हमें इस विषय में आत्म मंथन करने का निमंत्रण देता है। आइए हम सुसमाचार पाठ का श्रवण करते हुए अपने आप से पूछें, हमें अपने जीवन में कब अधिक घबराहट होती है? हम कब कब और क्यों अपने में घबरा जाते हैं? अपने घबराहट के क्षणों में हम अपने जीवन का संचालन कैसे करते हैं?
तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ईसा ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाले पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने में विश्वासी बने रहने को मदद करें, क्योंकि अपने विश्वास के कारण ही हम अपने को पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के निकट पाते हैं, जो हमें संभालते और सही दिशा में आगे बढ़ने को संचालित करते हैं, क्योंकि वे हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन है।
मार्गम सत्यम जीवन येसु, प्रियतम येसु, अनुपम येसु।
श्रोताओ, प्रेरित चरित से लिया गया आज का पहला पाठ हमें प्रथम ख्रिस्तीय समुदाय में ना समझी और एक तरह से तनाव की स्थिति का हाल प्रस्तुत करता है। यह स्थिति रसद वितरण को लेकर उत्पन्न होती है, लेकिन शिष्य इस तनाव भरी स्थिति का हल बैठक करते हुए एक उचित रूप में निकाल लेते हैं। यह आत्म मंथन की एक प्रक्रिया को दिखलाती है, जिसका जिक्र लोयोला के संत इग्नासियस अपने आध्यात्मिक साधना में करते हैं। ख्रिस्तियों के प्रथम समुदाय ने अपने सामुदायिक आत्म मंथन के द्वारा अपने जीवन में उत्पन्न हुई नासमझी को वार्ता करते हुए सुलझाया। उन्होंने अपने को पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होने दिया और इस भांति आत्मा की प्रेरणा से वे एक सही निर्णय तक पहुँचे, जो सबों के लिए उचित और हितकर हुआ। वहीं संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें आत्म मंथन की कमी के बारे में कहता है, जिसके फलस्वरूप कारीगरों ने जीवंत पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया, वही अब कोने का पत्थर बन गया है। यहूदियों के महायाजकों ने जीवन देने वाले मसीह को नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने उनकी बातों पर चिंतन नहीं किया। उन्होंने उनके कार्यों को देखा, परंतु वे हठधर्मी बने रहे। उन्होंने उनका तिरस्कार किया, जो उनके लिए ऐसा पत्थर बन गया जिससे वे ठोकर खाते और गिरते हैं। श्रोताओ, संत पौलुस हमें कहते हैं कि हम ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, अतः वे हमें राजकीय वंश, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा कहते हैं। हमारा बुलावा इसीलिए हुआ है कि हम ईश्वर के महान कार्यों का बखान करें, जिसे उन्होंने हम सबों के जीवन में पूरा किया है। ईश्वर के इस कार्य को सही रूप में करने हेतु हमें उनमें अपने आध्यात्मिक भवन का निर्माण करने को कहा जाता है, जिसकी नींव स्वयं यीशु ख्रीस्त हैं। हमारे आध्यात्मिक भवन का निर्माण यीशु ख्रीस्त में तब ठोस रूप में होता है, जब हम अपने को उनके साथ संयुक्त करते हुए उनके जीवनदायी बातों पर विश्वास करते हैं। पुनर्जीवित प्रभु पर हमारा विश्वास और भरोसा हमें मूल्यवान बनाता है, और हम अपने जीवन में कठिनाइयों और मुसीबतों के बावजूद अडिग बने रहते हैं, क्योंकि हमारी नींव मजबूत चट्टान में स्थापित की गई है। श्रोताओ, आज के सुसमाचार का प्रथम वाक्य हमें कहता है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हमारे जीवन में घबराहट का कारण विश्वास की कमी होती है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर इसलिए घबराते और विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास ईश्वर में अपनी मजबूती को प्राप्त नहीं है। जिस भांति जड़हीन वृक्ष हवा के झोंकों से हिलकर बहुधा उखड़ जाता, उसी भांति अपने विश्वास की कमी के कारण छोटी मुसीबतों के आने पर हम घबरा जाते और अपने में विचलित हो जाते हैं। पुनर्जीवित यीशु आज हमें पिता ईश्वर और अपने ऊपर विश्वास करने को कहते हैं। श्रोताओं, हमारे विश्वास की शुरुआत यीशु के वचनों को ध्यान से सुनने के द्वारा होती है। वहीं उन वचनों पर चिंतन करते हुए उन्हें अपने में आत्मसात करना हमारे विश्वास को मजबूती प्रदान करता है। यीशु ख्रिस्त में विश्वास करने के द्वारा हम उनमें शांतिमय निवास स्थल के भागीदार बनते हैं, जिसका प्रबंध करने हेतु यीशु पिता के पास जाते हैं। यीशु के वचनों पर विश्वास करना उनकी शिक्षा और उनके द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चलना है, जो हमारे लिए सत्य है, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश करने के हकदार होते हैं। यीशु के वचनों को अपने में अंगीकृत करने के द्वारा हम पिता के वचनों को अपने में आलिंगन करते हैं, क्योंकि यीशु की शिक्षा उनकी शिक्षा नहीं वरन पिता ईश्वर की शिक्षा है, जिन्होंने उन्हें हमारे मुक्ति हेतु संसार में भेजा। इस भांति यीशु हमें कहते हैं कि उन पर विश्वास करने वाला स्वयं उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि वे पिता के पास जा रहे हैं। अपने ऊपर विश्वास करने के द्वारा वे हमें पिता के कार्यों को पूरा करने की शक्ति प्रदान करते हैं। श्रोताओ, पास्का के पांचवें रविवार का प्रभु संदेश हमारे लिए यही है कि हम अपने जीवन में ईश्वरीय शिक्षा का आत्म मंथन करें, क्योंकि इसके द्वारा हम उन मूल्यवान बातों का चुनाव करते हैं, जो यीशु ख्रिस्त में हमें अपने लिए एक मजबूत और महत्वपूर्ण निवास तैयार करने की शक्ति प्रदान करता है। इस भांति हम यीशु ख्रिस्त के मार्ग में होते हुए सत्य को अनुभव करते और अनंत जीवन की विरासत में प्रवेश करते हैं।
सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु, सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु, वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो, शक्ति देता, सत्यम जीवन येसु, प्रियतम येसु, अनुपम येसु, मार्गम सत्यम जीवन येसु, प्रियतम येसु, अनुपम येसु। जीवन येसु, प्रियतम येसु, अनुपम येसु।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन के प्रेरितिक आवाज संत मार्था के प्रार्थनालय में शनिवार को क्रिस्त त्याग अर्पित करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने सेंट विंसेंट दी पॉल की पुत्रियों के लिए प्रार्थना की, जो संत पापा एवं संत मार्था में रहने वाले लोगों की मदद करते हैं। अपने उपदेश में संत पापा ने कहा कि पौत्र आत्मा कलीसिया को बढ़ाता है, किंतु बुराई की आत्मा इसे ईर्ष्या, सत्ता और धन के द्वारा नष्ट करता है। शनिवार को क्रिस्त त्याग अर्पित करते हुए संत पापा ने मरीलाक के संत लुइसा के पर्व की याद की, जिन्होंने संत विंसेंट दी पॉल के साथ चैरिटी की पुत्रियों के धर्म समाज की स्थापना की है। क्रिस्त त्याग के आरंभ में संत पापा ने कहा, आज मरीलाक की संत लुइसा का पर्व है, हम विंसेंट की धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें जो इस क्लिनिक को करीब 100 सालों से चला रहे हैं और यहाँ संत मार्था में भी काम करते हैं। प्रभु धर्म बहनों को आशीष प्रदान करें। अपने उपदेश में संत पापा ने प्रेरित चरित से लिए गए पाठ पर चिंतन किया, जहाँ अंतियोक की यहूदी भीड़ को देखकर पौलुस से ईर्ष्या करते और उनकी निंदा करते हैं। यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं तथा नगर के नेताओं को उभारा और पौलुस एवं बरनबस के विरुद्ध उपद्रव खड़ा किया तथा उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। संत पापा ने कहा, एक ओर पौत्र आत्मा है जो कलीसिया को बढ़ाता है, जबकि दूसरी ओर बुराई की आत्मा है जो कलीसिया का विनाश करने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा, ऐसा हमेशा होता आया है, कलीसिया आगे बढ़ती है किंतु शत्रु इसे नष्ट करने आता है। इस विकास में बहुत प्रयत्न करना और शहीद होना पड़ता है। संत पापा ने कहा कि कलीसिया ईश्वर की सांत्वना और दुनिया के अत्याचार के बीच चलती है, और जब कलीसिया में कोई कठिनाई नहीं होती, इसका अर्थ है कि कुछ चीज का अभाव है। यदि शैतान शांत है तो इसका मतलब है कि चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं। संत पापा ने कहा कि ये संघर्ष चलते ही रहेंगे। पौत्र आत्मा कलीसिया में सामंजस्य लाता और शैतान उसे नष्ट करता है, जो आज भी हो रहा है। इटली में कोरोना वायरस के कारण किए गए लॉकडाउन को खोलने के बाद अब गिरजाघर भी खोल दिए जाएंगे, जिसमें क्रिस्त त्याग, विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार एवं बपतिस्मा संस्कार को 18 मई को पुनः शुरू किया जाएगा। गिरजाघरों में समारोहों के दौरान दूरी बनाए रखने और स्वच्छता उपायों को अपनाने पर भी सख्ती से ध्यान दिया जाएगा। 2 महीनों तक लाइव प्रसारण के माध्यम से मिसा में भाग लेने और अपने घरों में प्रार्थना करने के बाद इटली के विश्वासी फिर से गिरजाघरों में आकर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे। उधर 9 मई को यूरोप दिवस पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन ने संस्थापक पिताओं के मनोभाव के महत्व पर वैटिकन मीडिया से बातें की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे कठिन समय में उर्सुला ने एकात्मकता एवं बहुपक्षीय यूरोपीय मूल्यों को पुनः जारी करने का बढ़ावा दिया।
पोलैंड के लोगों की एकजुटता की बदौलत शुक्रवार को वैटिकन में मास्क और अन्य चिकित्सा सामग्रियों से भरे 2 ट्रक पहुंचे। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा और संत पापा फ्रांसिस ने इस सप्लाई के आने के कुछ दिनों पहले बातें की थी। वाटिकन में पोलैंड के राजदूत जानुस कोटाकोस्की और संत पापा फ्रांसिस की ओर से परम धर्मपीठीय कोष के दानदाता पोलिश कार्डिनल कॉनराड क्रेजेस्की ने मेडिकल सप्लाई के आगमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजदूत जानुस ने वाटिकन न्यूज को बताया कि वाटिकन को भेजा गया यह विशेष उपहार पोलैंड की एकजुटता का संकेत है। उन्होंने इस बात को जोर देते हुए कहा, एकजुटता हमारी विशेषता है। वाटिकन सिटी के लिए भेजा गया उपहार गरीबों और उन लोगों के लिए है जो बीमार हैं। भेजी गई चिकित्सा आपूर्ति से इटली के गरीबों, वाटिकन सिटी, जेंडारमरिया और स्विस गार्ड को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मामले में पोलैंड की स्थिति वैसी नहीं है जैसा इटली में है। यह क्षण हमारे राष्ट्र के लिए भी मुश्किल का समय है, लेकिन इटली, स्पेन और जर्मनी की तरह नहीं। अब तक पोलैंड में 15,366 मामले दर्ज किए गए हैं और 776 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही 5,184 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। उधर मनीला के प्रेरितिक प्रशासक धर्माध्यक्ष बोडरिक पैबिलो ने मनीला महाधर्म प्रांत में ऑनलाइन पाप स्वीकार संस्कार देने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय गोपनीयता की रक्षा और पाप स्वीकार संस्कार की सत्यता के लिए लिया गया है, क्योंकि संस्कार के लिए पुरोहित और पश्चतापी के बीच एक व्यक्तिगत संवाद की आवश्यकता होती है, लेकिन आध्यात्मिक सलाह मशविरा देने या आशीर्वाद प्रदान करने के लिए डिजिटल संस्थानों और टेलीफोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति सभी चीजों से ऊपर ईश्वर के प्रेम और विश्वास को व्यक्त करता है और अपने मन में जितनी जल्दी हो सके पुरोहित के पास जाकर पाप स्वीकार करने का संकल्प करता है, तो इस परिस्थिति में उसके सभी पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। उधर कोविड-19 महामारी के साथ पूरे विश्व में नफरत भरे संदेशों पर चिंता जताते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने ऐसे संदेशों के उदाहरण दिए हैं जिनमें विदेशियों के खिलाफ भावनाएं, यहूदीवाद विरोधी साजिशें और मुसलमानों पर हमला के अलावा अन्य मामलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वायरस ये परवाह नहीं करता कि हम कौन हैं और हम कहां रहते हैं, हमारी आस्थाएं क्या है या किसी अन्य प्रकार की विभिन्नताएं। इस सुनामी से एक साथ मिलकर निपटने के लिए हर संभव एकजुटता की आवश्यकता है। यूएन प्रमुख ने कहा कि प्रवासियों और शरणार्थियों को वायरस का स्रोत बताकर तिरस्कृत किया गया है और उन्हें उपचार से वंचित रखा गया है। अब तक पूरे विश्व में 39,35,828 मामले दर्ज किए गए हैं और 2,74,655 लोगों की मौत हुई है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।